अब जल्द ही बड़े हंसी खुशी के माहौल में राधिका और एंजल की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। इस बीच रौनक खिलखिलाकर सबकी ओर देख रही थी। आहान मौका देकर रौनक के करीब आया और अपने चेहरे पर उम्मीद भरी चमक लाकर बोला, मिस हवा हवाई, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो एक बात बोलूं। आहान का ये कहना ही था कि रौनक चिढ़ गई। उसका मूड स्विंग होने लगा और वो शक भरी निगाहों से बोली, देखो छछुंदर, इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का कोई इरादा नहीं है, और 2 घंटे पहले जो तुमने घटिया हरकत की थी ना, वो मैं अब तक भूली नहीं हूँ। ये तो शुक्र मनाओ अभी तक मैंने दादाजी को इस बारे में नहीं बताया, वरना दादाजी अब तक तुम्हारी टांगे तोड़ देते। रौनक के ये कहने पर आहान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो फटाफट से ड्रिंक बार में गया और बिना रुके ड्रिंक करने लगा। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हिम्मत ही नहीं मिल रही थी कि वो रौनक से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके। लेकिन तभी हल्दी का फंक्शन पूरा हो चुका था। एंजल और राधिका दोनों के हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी। आगे का फंक्शन रौनक को कंटिन्यू करना था, और फटाफट से रौनक ने एक बार फिर से जोरदार परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। इस बार गाना चल रहा था, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, हो नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, निकल रही थी मैं तो सच के सवर के, टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके, हो बोली मुझे क्यों री कहाँ चली कलमुई, खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं, यूं ही ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, हाँ ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ढल जाए रे जवानी इंतजार में, हो ढल जाए रे जवानी तेरे प्यार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ये गाना बजते ही रौनक ने धमाकेदार एंट्री में अपना डांस करना शुरू कर दिया। सभी कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अरमान आस्था का हाथ पकड़े हुए बैठा रहा, जिसके दिल पर से एक बड़ा सा बोझ उतर चुका था। ये डांस चल ही रहा था कि रौनक ने धमाकेदार परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। लेकिन ठीक उसी वक्त आहान दारू की बोतल लेकर सीधा डांस फ्लोर पर आया और दारू की बोतल वहां बीचों बीच फ्लोर पर छोड़ दी। सब लोग हड़बड़ाकर आहान को घूरते हुए गुस्से से देखने लगे। तब आहान रौनक को नाराजगी से देखकर अपनी आवाज ऊंची करके बोला, मैं तुम्हें कब से मना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डांस नहीं करना है, नहीं करना है, तो तुम डांस क्यों कर रही हो। इस वक्त आहान की जुबान बोलते हुए पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उसने काफी ज्यादा दारू पी ली थी। तभी दादाजी आहान को गुस्से से घूर कर बोले, आहान ये क्या बचपना है, डांस करने दो बिटिया को, क्यों परेशान कर रहे हो। रौनक मुंह बनाते हुए बोली, आप नहीं जानते दादाजी, इसने मुझे कितना परेशान करके रखा हुआ है, मैं तो कब से इसकी शिकायत आपको करना चाहती थी। लेकिन तभी आहान रौनक के पास आया और उसे कंधों से पकड़कर झुंझलाकर बोला, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम। आहान का दो बार तुम दोहराना ही था कि रौनक चौंक गई और इरिटेट होकर आहान को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, अरे क्या कहना चाहते हो तुम, इतना सस्पेंस क्या लगा रखा है। तब आहान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम माँ बनने वाली हो। आहान के ये कहने पर रौनक की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो नर्वस होकर इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगी। वहीं रश्मि, दादाजी, सुमित, आकाश, ध्रुव, वंशिका, राधिका, अविनाश जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, सब आंखें फाड़कर कभी रौनक की ओर देखने लगे तो कभी आहान को देखने लगे। आहान के ये बात बोलते ही दादाजी उनके पास आए और तभी हुई आवाज में बोले, बेटा तू जानता है क्या कह रहा है। तभी रश्मि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर एक जग पानी आहान के ऊपर उड़ेल दिया और बोली, मुझे पता है ये सब ये नशे में बोल रहा है। आहान घूरकर रश्मि और बाकी घर वालों को देखने लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नशा उतरने के बाद भी आहान ने सबसे नजरें चुराते हुए ये बात दोहराई, रौनक प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है। सब लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, सब उन दोनों के लिए खुश थे। और अचानक आहान घुटनों के बल बैठकर रौनक से दिलकश अंदाज में बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू मिस हवा हवाई। रौनक जो आहान को दिल ही दिल में पसंद करती थी, लेकिन अब अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद और आहान की शादी और प्यार के इजहार के बाद अब रौनक के मन में किसी तरह का कोई वहम नहीं था। उसने डबडबाई आंखों से आहान को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर उसने रश्मि की ओर देखा। रश्मि ने मुस्कुराते हुए रौनक को गले से लगा लिया और उसे इजाजत देते हुए बोली, ये मेरा देवर है और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। रश्मि के ये कहने पर रौनक ने शर्माकर सर हिलाकर हाँ का इशारा किया और फिर रश्मि को गले से लगा लिया। और अब आहान आंखों में खुशी की चमक लेकर जोरों से चिल्लाया, ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ध्रुव आगे बढ़कर आहान को मुबारकबाद दी और उसे छेड़ते हुए बोला, वाकई यार तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकला, और आहान को गले से लगा लिया। फिर आवाज धीमी करके बोला, मुझसे पहले तो तूने बाजी मार ली। तभी आहान मुस्कुराते हुए जोश भरी आवाज में बोला, अरे म्यूजिक चलाओ यार। अब जल्द ही वहां म्यूजिक बजने लगा। अब जिस गाने पर थोड़ी देर पहले रौनक नाच रही थी, उसी गाने पर आहान, ध्रुव और सभी ने बुरी तरह से डांस करना शुरू कर दिया। आहान और बाकी सब थिरक रहे थे। वहीं दूसरी ओर दादाजी नानी माँ के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिए थे। नानी माँ जो मुस्कुराकर कभी आहान रौनक को देख रही थी तो कभी वंशिका और ध्रुव को देख रही थी, ने म्यूजिक बंद करवा दिया और थोड़ा चेहरे पर चमक लाकर लाउड वॉइस में बोली, अच्छा अच्छा बच्चों, इसी के साथ मैं आप सबसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। नानी माँ की वॉइस सुनकर सब नानी माँ की ओर देखने लगे। तब नानी माँ ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैंने और भाई साहब आलोक सिंघानिया ने फैसला किया है कि आज इसी हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में ही रौनक बिटिया के साथ आहान बेटा और वंशिका बिटिया के साथ ध्रुव बेटी की भी हल्दी मेहंदी रस्में होंगी। नानी माँ की ये अनाउंस करते ही आहान तो खुशी से पूरी तरह से बंदर की तरह उछलने लगा। रौनक हल्की से मुस्कुराई, वहीं ध्रुव और वंशिका शर्मा गए। आहान दौड़कर नानी माँ को गले से लगा लिया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगा। नानी माँ चिल्लाई, अरे नालायक बदमाश, छोड़ मुझे, अगर इस उम्र में मेरी हड्डी टूट गई तो जल्दी जुड़ेगी भी नहीं। नानी के ये कहने पर आहान ने नानी माँ को छोड़ा। आहान की इस हरकत पर रौनक जोरों से खिलखिलाकर हंसने लगी और बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। वहीं ध्रुव जल्दी से नानी के पास गया और उन्हें गले से लगाकर थैंक यू बोला। तब जल्दी ही नानी माँ ने आस्था की ओर इशारा किया और आस्था ने फटाफट से वंशिका और रौनक, अविनाश और एंजल, साथ ही साथ राधिका और सुमित जहाँ बैठे थे वहाँ सबके चेयर अरेंज कर दी। अब रौनक के साथ आहान और वंशिका और ध्रुव को बैठा दिया गया और एक बार फिर जोरों शोरों से उन लोगों की भी हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी कर दी गईं। जल्द ही सारी रस्में सब कुछ अच्छे से निपट गया और सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। आस्था आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए और फिर फटाफट से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई।
क्योंकि आस्था को थोड़ी सांस फूलने जैसी हो रही थी तो थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए जैसे ही वो बालकनी में खड़ी हुई, अरमान तुरंत पीछे से आया और उसे पीछे से हक करके बोला, तुम ठीक हो ना? अरमान के ये बोलते ही आस्था के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आज आस्था का दिल पूरी तरह से हल्का फुल्का हो गया था। तभी आस्था ने अपना पूरा शरीर का भार अरमान पर डालते हुए कहा, मुझे गोद में उठाइए ना प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। आस्था के बड़े प्यार से ये बोलते ही अरमान ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और सीधा बेड पर लेटाकर उसके बालों में हल्के हल्के मसाज करने लगा। आस्था सुकून से अरमान के बाहों में सो गई। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव पूरी तरह से बेचैन थे और वे दोनों इस वक्त बाहर का चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि लगे हाथ उनकी हल्दी मेहंदी तो हो ही गई थी, लेकिन ध्रुव वंशिका से मिलना चाहता था और आहान रौनक से। तब आहान इरिटेट होकर ध्रुव से बोला, भाई क्या करें, एक रात का भी इंतजार नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन लड़कियों ने हम पर क्या जादू किया है, वरना हम दोनों भाई अकेले में कितनी मौज मस्ती कर लिया करते थे, हमें कभी किसी लड़की की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पता नहीं, जब से ये लड़कियां हमारी जिंदगी में आई हैं, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने हम पर कोई काला जादू कर दिया है। तब ध्रुव भी सहमति जाहिर करते हुए बोला, हाँ यार, अब तो मुझे भी यही लगता है, ये रात एक बहुत लंबी रात हो गई है जो कट ही नहीं रही है। तब आहान कुछ पल सोचते हुए बोला कि हमें इसके सल्यूशन के लिए नानी माँ के पास चलना चाहिए, क्योंकि एक नानी माँ ही है जो हमारी मदद कर सकती है, नानी माँ को जादू टोनों से बचने के तरीके आते हैं। आहान की ये आइडिया देते ही ध्रुव ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और वे दोनों तुरंत रात के 2 बजे नानी माँ का दरवाज़ा खटखटाने लगे। नानी माँ जो सोई हुई थी, अचानक रात को दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर डरकर उठकर बैठ गई और परेशान होकर सोचने लगी कि आखिरकार इतनी रात को कौन हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर के आदमी यहाँ आ गए हों और वो मुझे मारना चाहते हों, उन्होंने मुझे देख लिया हो। इस वक्त नानी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर अपना दिमाग चलाने लगी और इधर उधर देखने लगी। तभी उनकी नज़र कोने में रखी हुई हॉकी स्टिक पर गई उसके बाद नानी माँ ने बेड की चादर ले ली और खुश होकर मन में बोली, आ जाओ कल मुँह, जिस तरह से हमने तुम्हारे उस राजवीर को मारा है इस तरह से हम तुम्हें भी मार डालेंगे। ये बोलते हुए नानी माँ काफ़ी ज़्यादा जोशीली लग रही थी और ठीक उसी वक्त उन्होंने उस हॉकी स्टिक को हाथ में उठा लिया और दरवाज़ा खोला और चुपके से साइड में खड़ी हो गई। अब ध्रुव आहान जो बाहर खड़े हुए थे तुरंत दरवाज़ा खुलते ही अंदर जाने लगे, लेकिन नानी माँ ने बिना उनकी ओर देखे फटाफट से उनके ऊपर एक काले कपड़े वाली चादर डाल दी और बिना देरी किए उस हॉकी स्टिक से उन्हें घपाघप मारना शुरू कर दिया और वो लगातार उनकी धुलाई करने लगी। उन दोनों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि उनके साथ क्या हुआ। वो तो बस नानी माँ से जादू टोनों से बचने का तरीका खोजने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये क्या, नानी माँ ने तो उन पर ही हमला बोल दिया था। अब आहान ध्रुव चिल्लाना शुरू कर दिए, आह हाँ बचाओ बचाओ, और ध्रुव तो बुरी तरह से बचाओ, हाँ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ, हाँ ध्रुव आहान ने जोरों का शोर मचा दिया। लेकिन नानी माँ बोली, मेरे बाप के ससुरों, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम यहाँ मुझे मारने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर नानी माँ लगातार उन पर वार करती जा रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके शोर शराबे की आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए। केवल अरमान और आस्था नहीं जागे थे, क्योंकि उनका कमरा साउंडप्रूफ था तो उनके कमरे में कोई आवाज़ नहीं जाती थी, वे तो सुकून से सोए हुए थे। लेकिन बाकी सब के सब दौड़कर अब वहाँ आ गए थे, वंशिका, रौनक, एंजल, अविनाश, साथ ही साथ रश्मि, आकाश, सुमित, राधिका जैसे, उन सब ने ये नज़ारा देखा तो सब चौंक गए और एक साथ चिल्लाकर बोले, रुको, रुक जाइए नानी माँ, प्लीज़ रुक जाइए नानी माँ, ये क्या कर रही हैं आप।